हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तेर कदम्ब के सुंदर वन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने वहां पर कुटी में दंडवत किया, वो श्रीपाद रूप गोस्वामी महाराज की कुटी है। रूप गोस्वामी महाराज जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, उसमें प्रधान मंजरी हैं, रूप मंजरी उनका अवतार है। पहले सखियां होती हैं और सखियों के असिस्टेंस में मंजरियां भगवान की सेवा करती हैं। तो रूप गोस्वामी जी सबसे प्रधान मंजरी हैं, रूप मंजरी। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में सभी अनुयायियों को रूपानुग कहते हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी। और हमारे संप्रदाय का भाव क्या है कि हम दास 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 अनुदास बनना चाहते हैं। ये नहीं कि हम डायरेक्टली राधा कृष्ण के सेवक बनना चाहते हैं, हम राधा कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक बनना चाहते हैं। जब दास बनता है तो एक बात होती है, लेकिन दास 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 अनुदास बनता है तो भगवान की सबसे ज्यादा कृपा होती है, क्योंकि वो सबसे नम्र स्थिति होती है। तो रूप गोस्वामी जी यहां पर रहकर उन्होंने भजन किया है। उनका स्थान वैसे वृंदावन में था, राधा गोविंद जी मंदिर के पास। राधा गोविंद जी मंदिर उनकी उनका मंदिर है, उनके विग्रह हैं। राधा गोविंद जी स्वयं प्रकट हुए थे वृंदावन में। योगपीठ नाम का स्थान है, वहां पर एक सुरभि गौ रोज दूध दिया करती थी अपने आप, पर्वत पर जाकर, थोड़े से तिल पे जाकर। तो फिर उन्होंने खुदाई किया और वहां पर गोविंद जी की मूर्ति प्रकट हुई, उनको स्थापन किया। तो राजा मान सिंह आया, उन्होंने कहा कि हम आपसे सेवा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी सेवा मत करो, ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाओ। राधा गोविंद देव का उन्होंने 7 मंजिल का मंदिर बनाया, लाल लाल पत्थर से। इतना सुंदर और भव्य मंदिर था, सबसे बड़ा वृंदावन का मंदिर था वो राधा गोविंद जी मंदिर। और वो जब बन रहा था तब रूप गोस्वामी जी अपने भतीजे जीव गोस्वामी के मंदिर में निवास करने गए, और बीच में भ्रमण करते हुए वृंदावन में भी गए, तो उसमें यहाँ पर भी आए थे इस सुंदर वन में। इसके पास में देखेंगे वहाँ पर एक मंदिर दिख रहा है आपको गुलाबी रंग का, उस खेत के आगे ही बहुत सुंदर घूमट है, उसका शिखर है, वो आशेश्वर वन है। और ये टेर कदम है, टेर का मतलब है पुकारना, टेर लगाना मतलब पुकारना, और कदम का मतलब कदम का पेड़। देखिए आप, ये कदम का पेड़ है, यहाँ पर कदम का पेड़ है, ये पीपल का वृक्ष है, और यहाँ पर भी कदम का पेड़ है। देखो यहाँ पर आपके सामने है ना, बहुत साल पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर एक बहुत ऊंचा कदम का पेड़ था, बहुत ऊंचा। अभी वो कालांतर में उनका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर रोज शाम को जब गौचारण करके भगवान लौट के आते हैं, उनका घर नंद भवन में है, बहुत पास में है। यहाँ पर वो कदम के पेड़ जो यहाँ पर था ना, अभी जिसका प्रतीक था, बहुत ऊंचा पेड़, एकदम ऊंचा, उसके सबसे ऊंची शाखा पर जाके बैठ जाते हैं और वहां जाकर बंसरी बजाते हैं। और वो बंसरी ऐसे बजाते हैं कि जो भी गाय सुनती है वो उस स्वर में केवल अपना नाम सुनती है। जैसे कि धुन बजेगी तो आपको सुनाई पड़ेगा मनोज, आपको सुनाई पड़ेगा रामचरण, ऐसे हर गाय को केवल उसका नाम सुनाई पड़ेगा, और वो पुकार सुनते हुए सब गाय भाग भाग के आएंगी। बहुत सुंदर वर्णन आता है इसका, तो रोज की लीला है यहाँ पर। रोज यहाँ पर सब गाय इकट्ठा होती है, सबको इकट्ठा करते हैं। ऐसा भी है कि सब गाय जो है जैसे ही वो मुरली की धुन बजती है अपने कान ऊपर करके, पूंछ ऊपर करके भाग के आते हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी ओर देखते रहते हैं, उस स्वर की ओर, एकदम भ्रमित से, मोहित से होकर, पागल से होकर सभी गाय जो है एकाग्र चित्त से, जैसे कि चित्रपट हो ना, चित्रपट ना, कोई मूवमेंट है ना कोई कुछ भी नहीं, एकदम पेंटिंग की तरह। उसको कहते हैं स्तंभ, स्तंभ मतलब एक अष्ट विकार में एक अंग है, स्तंभ मतलब स्तंभित होना, टू बिकम स्टंड। सो मुरली की आवाज सुनकर वो एकदम स्तंभित हो जाते थे और ऐसे गले ऊपर करके केवल ठाकुर जी को देख रहे हैं और उसकी आवाज सुन रहे हैं और आवाज से एकदम भाव विभोर हो रहे हैं। कुछ कुछ गाय ऐसी हुआ करती थी, वो मुरली की तान में अपनी पुकार अपना नाम सुनते हुए भी अनसुना कर देती थी जानबूझकर। फिर वो पेड़ से उतरकर उनके पास जाकर उनको बुला के लेके आते थे बड़े प्रेम से, क्योंकि देवर अटेंशन सीकिंग, उनको ध्यान चाहिए था विशेष रूप से, तो वो देते हैं उनको लेके आते हैं। वे सब ग्वाल बाल अपने लाखों अनंत करोड़ों गायों को लेकर गीत गाते हुए अपने घर चले जाते हैं। घर में वहां पर मैया वेट कर रही हैं, बाबा वेट कर रहे हैं, सखियां वेट कर रही हैं। हाँ, अलग प्रकार के सखियां होती हैं घर में। कुछ सखियां होती हैं वो केवल एकदम दास से भाव में सेवा करती हैं यशोदा मैया की, गोबर निकालना, झाड़ू लगाना, जब ठाकुर जी आ रहे हैं लौट के शाम को तो दीपक जलाना, दीपक जो आरती का दीपक है उसको जला कर रेडी रखना, फूल रखना आरती उतारने के लिए, हर चीज रेडी रहती है एकदम सेवा करने के लिए। सब वहाँ पर आतुर हैं ठाकुर जी आएंगे, जब वो गीत गाते हुए मुरली बजाते हुए दोनों भैया, दशम स्कंद में वर्णन आता है उसका, कृष्ण बलराम दोनों भाई मुरली बजाते हुए आते हैं। हाँ, और सब गायों को लेकर फिर सब ग्वाल वाल अपने घर चले जाते हैं, कृष्ण बलराम अपने घर चले जाते हैं, उनका स्वागत होता है, उनको संदेश जो होता है ना मिठाई का, दूध का मिठाई का बना हुआ वो खिलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, फिर घर जाके फिर स्नान कराते हैं उनको, फिर मक्खन मिश्री और भाकर भोग लगाया जाता है उनको, फिर मैया लोड़ी सुनाती है और ठाकुर जी शयन करते हैं। इस प्रकार से लीला होती है रोज की, अनंत प्रकार है उसके, अनंत लीला है उसके अंदर, इतना आनंद है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने रंग की गाय लगा कर रखे, ऐसे भगवान के 108 झुंड थे, मराठी बोलते हैं कड़प कड़प, 108 प्रकार के, हर प्रकार के रंग के, धौरी कारी पीरी, हाँ फिर भूरी, भूरी है क्या, भूरी यहाँ पर भूरी किधर है, भूरी का नाम लिखा नहीं, हाँ भूरी मतलब ब्राउन कलर, हाँ कुमकुमी तिलकिनी, हाँ धौली, ऐसे कई, धौली मतलब गोरी फिर कुछ गोरे हैं उसके ऊपर काले धब्बे हैं, कुछ काले हैं उसमें गोरे धब्बे हैं, कुछ गोरे हैं वो भूरे रंग के धब्बे हैं, कुछ भूरे रंग के ऊपर सफेद रंग के धब्बे, ऐसे अनंत प्रकार के, कुछ गाय ऐसे तिलक लगा हुआ है उनका नेचुरल वाइट रंग का तिलक सर पे, तिलक ही नहीं कहते उनको, ऐसे अलग अलग प्रकार के झुंड हैं और वो भगवान पर इतना प्रेम करते हैं। केवल नंद बाबा की 9 लाख गाय थी और ऐसे 9 नंद थे, 9 उपनंद थे, नंद बाबा के 4 और भाई थे, ऐसे यहाँ पर करोड़ों करोड़ों अब जो गायें थी यहाँ पर, बाकी ग्वाल बाल थे अलग थे उनकी भी गाय थी और साथ साथ में भैंस।